चलिए जी तफसीर देखते हैं आयत नंबर 83 से। व इस अखसना मीसा कबनी इसराईल ला ताबुदून इल्लल्लाह वबिल वालिदैन एहसाना वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना वक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात थुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलम मिनकुम वअन्तुम मुरीदून। और जब हमने बनी इसराइल से इकरार लिया कि न तुम इबादत करना मगर अल्लाह की और माँ बाप से नेक सलूक करना और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मिस्कीनों से और सब लोगों से नेक बात कहना और नमाज कायम रखना और ज़कात देना, लेकिन हुआ क्या? तुम मतवल्लई तुम, फिर तुम फिर गए मगर थोड़े से तुम में से, और तुम हो ही मुंह फेरने वाले। यहाँ से अब दोबारा अल्लाह ताला बनी इसराइल की शरीयत की कुछ बातें हमारे सामने रखते हैं जिनका हुक्म दिया गया था तौरात में। आप लोगों ने इंग्लिश में मारूफ बात सुनी होगी 10 कमांडमेंट्स। ज्यूस की हिस्ट्री में इन लफ्ज़ों को बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है। 10 अहकाम अशरा बोलते हैं इसको उर्दू में, इंग्लिश में कहते हैं 10 कमेंडमेंट्स और उर्दू में अहकाम अशरा, अशरा कहते हैं 10 को। ये वो 10 बेसिक अहकामात थे कि जो तौरात के ज़रिए इनको दिए गए, और ये सारे के सारे आज इस्लाम में भी मौजूद हैं। इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो आयत हम पढ़ रहे हैं ये बुनियादी तौर पर तौरात ही के मज़मून को हमारे तक पहुँचाती है। इससे उन लोगों के सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि जो कहते हैं कि क्या हरज है अगर हम तौरात को या आज की बाइबल को नसीहत के लिए पढ़ लें, क्योंकि अल्लाह ताला ही ने नाजिल की थी। तो उसके जवाब में जो बात कही गई थी कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ वैलिड थी उसको आज कुरान पाक में हमारे लिए भी रख दिया, तो ये आयत जो है उन्हीं में से है। तरतीब को सामने रखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। पहली बात क्या है कि वाइस अखसना, और हमने लिया मीसा का बनी इसराइल, बनी इसराइल से पक्का वादा। कैसे लिया था अल्लाह ताला किसी कौम से पुख्ता वादे या पक्के वादे कैसे लेता है? किताब के ज़रिए, नबी के ज़रिए। हमारे यहाँ वादे का एक अजीब सा तसव्वुर है, और वो क्या है कि हाथ में हाथ दे के फिर ज़ुबान से वादे के लफ्ज़ों को दोहराना, तो ऐसा नहीं होता। जब अल्लाह ताला किसी इंसान की तरफ हिदायत का कोई नुमाइंदा भेज देता है, अपने दौर में वो रसूल थे, आज के दौर में उसी पैगाम को आगे करने वाले दाईये दीन हैं, तो वो गोया के उस कौम का एक वादा हो जाता है कि जो बात अल्लाह के दीन की हम तक पहुंचेगी हम उस पे अमल करेंगे। यहाँ पे बुनियादी तौर पे बात तो वादे की गई, लेकिन मुराद क्या है कि उनकी किताबों में इस बात का हुक्म दिया गया था बनी इसराइल से। क्या ऐसा कोई हुक्म हमें भी दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। कहाँ दिया गया है? पूरे का पूरा कुरान पाक हमारे सामने एक वादा ही है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके दिए वो असल में अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी चीज़ है कि अगर तुम इन बातों पे अमल करोगे तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और अल्लाह ताला ने ये चीज़ हर दौर के मुसलमानों के लिए रखी। आज का ये पूरा रुकू बहुत ही अहम है। आप कह सकते हैं कि मौजूदा दौर के मुसलमानों की गलती क्या है, या इस वक्त मुसलमानों को अपने आप को किस चीज़ के लिए तैयार करना है, उसका जवाब इंशाअल्लाह ताला इस रुकू में हम देखेंगे कि बनी इसराइल को किताब दी गई और उस किताब की बुनियादी चीज़ें इस आयत में हमारे सामने रखी गई, और बताया गया कि देखो कितना प्यारा दीन था जो इनको मिला, जिस दीन की पहली शिख क्या थी कि ला ताबुदून इल्लल्ला, ना तुम बंदगी करना मगर अल्लाह की। अल्लाह ताला ने हर इल्हामी मज़हब में पहला हुक्म यही दिया है। सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने हमें भी यही हुक्म दिया, वकदा रब्बुका, और तेरे रब ने इस बात का फ़ैसला कर लिया, क्या कि तुम मेरे सिवा किसी की इबादत ना करना। तो पता क्या चला कि दीन की असल जो है ना वो बंदगी है, गुलामी। सूरत फातिहा में इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन में एक बंदा इसी बंदगी का इकरार करता है कि ऐ अल्लाह, मैं वाकई तेरे सिवा किसी और का बंदा नहीं बनूंगा। और ये बंदा बनना ही एक इंसान को दूसरों की गुलामी से निजात दिलाता है। होता क्या है कि जब एक रब की बंदगी में नहीं आते तो हमें बहुत सारों की बंदगी में आना पड़ता है। कहीं वो नफ्स की बंदगी है, ख्वाहिशों का गुलाम हो जाना, कहीं ज़ात बिरादरी ख़ानदान रस्म व रिवाज की गुलामी, कहीं मुआशरे की गुलामी, कहीं अपने ही जैसे इंसानों की गुलामी होती है। और नतीजा क्या होता है कि इंसान एक रब के सिवा दूसरे बहुत सारों का हो जाता है। अल्लाह ताला की शान में अगर एक बात कह दूं, और वो क्या है कि अल्लाह ताला को शराकत पसंद नहीं है। शेयरिंग तो इंसानों को भी पसंद नहीं होती कि चलो एक चीज़ अल्लाह शेयर कर लेते हैं, ज़रूर ही दिल खट्टे हो जाते हैं जहाँ भी कोई भी किसी चीज़ के साथ शेयर करता है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो खालिक है, उसके साथ हमारा ताल्लुक बिल्कुल अनटच्ड होना चाहिए। जितना हम अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि हम गैर मुतमईन होंगे। सूरह तर्रात में हम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी मिसालें दी कि जिससे एक इंसान एक रब का होने को समझ सकता है। कि मसलन एक शख्स, वो एक का ग़ुलाम है, उसका एक ओनर है, एक एम्प्लॉई है और उसका एक बॉस है। इसके बरक्स एक दूसरा शख्स है और उसके कई बॉस हैं। आप इस तरह कह लें कि एक औरत है, उसको बस एक का हुक्म मानना पड़ता है, और जिस औरत के साथ हुक्म देने वाले चार पांच और हों, उसको शौहर का भी सुनना पड़े, उसको सास का भी सुनना पड़े, उसको घर के एक एक बच्चे का हुक्म सुनना पड़े, तो उसकी ज़िंदगी काबिले रहम हो जाती है। यही कैफियत है उस इंसान की कि जो अपने आप को एक रब की गुलामी में दे देता है, फिर वो दूसरों से अपने आप को ऊंचा कर लेता है। आज अगर हम देखें, क्योंकि ये आयात हमारे ही अमल के लिए हैं, आज किसी बनी इसराइली को ये आयतें नहीं सुनाई जा रही, ये उम्मत मुस्लिमा को सुनाई जा रही हैं कि जैसे उनको ला ताबुदून इल्लल्लाह की दावत थी, तुम्हें भी यही कहा गया कि तुम भी एक रब के बन जाओ। और ना सिर्फ तुम्हें बल्कि हर नबी ने यही किया। कुरान पाक में आता है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदूनी। खुलासा क्या है आयत का कि और हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे, उन सब की तरफ वही की गई कि बेशक मैं ही इला हूँ, बस मेरी बंदगी करो। हर एक ने यही किया और उनकी दावत भी यही थी। लेकिन होता क्या है कि जब लोग मनमानी करना चाहते हैं, ख्वाहिशात के ग़ुलाम होते हैं, तो वो अल्लाह के दिए हुए निज़ाम को कबूल नहीं करते। और बंदगी का मफहूम हम सूरत फातिहा में बड़ी डिटेल से देख चुके कि सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम बंदगी नहीं है, बल्कि इबादत के अलावा उसमें कमाल अलहब कमाल अज़ुल, आजजी की इंतहा, मोहब्बत की इंतहा। अल्लाह से इतनी मोहब्बत हो किसी और से ना हो, अल्लाह ताला की नाराज़गी का इतना खौफ हो कि किसी और की नाराज़गी का इतना गम ना हो, उम्मीद अल्लाह से, खौफ अल्लाह से, तकदीर उसके हाथ में, यानी कारसाज वो है, मुश्किल कुशा वो है, देने वाला वो, लेने वाला वो, ये सारी कैफियत हैं एक रब की। हम जब किसी को कहते हैं कि हम फलां को नाराज़ नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा इस बात का हकदार है कि उसको नाराज़ ना किया जाए। तीन लफ्ज़ हमने बंदगी में पढ़े थे कि इबादत तीन चीज़ों का मजमुआ है। परस्तिश, ये जो हम परस्तिश करते हैं वर्शिप के मानों में, रकू सजदा क्याम, आप कह सकते हैं कि हम नहीं इबादत कर, हम नहीं सजदा करते किसी और के सामने सिवाय अल्लाह के, हम नहीं रुकू करते किसी और के सामने, हम नहीं खड़े होते ताज़ीम के लिए किसी के आगे सिवाय अल्लाह के। क्योंकि क्याम, रुकू, सजदा, ये सारे के सारे जो हैं ये अल्लाह ही के हक हैं। आज जब लोग दूसरों की कब्रों पे खड़े हो जाएं या ताज़ीम पे ये सोच के खड़े हो जाएं कि अल्लाह के नबी आए हुए हैं, तो ये भी एक इबादत में शराकत वाली एक कैफियत हो जाती है। अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ मांगना, ये भी ला ताबुदून इल्लल्लाह के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इबादत तो सरासर दुआ है। अद दुआ हुवल इबादा, दो लफ्ज़ों की हदीस है कि दुआ ही इबादत है। तो अगर हम अल्लाह के माँ सिवा से दुआ मांग लेते हैं ना कि आप हमारी बिगड़ी बना दें, आप हमारी मुश्किल संवार दें या उसको सही कर दें, तो वो भी एक किस्म की इबादत है। तो लिहाजा इबादत, फिर इसी तरह गुलामी, रब के सामने अपने आप को गुलाम समझना है। जिस तरह गुलाम की आंखें झुकी होती हैं, इस तरह हमारी आंखें भी झुकी रहें। और इसी तरह इताअत, सबमिशन, ये नहीं कि बैठ के बातें तो बड़ी करते रहें और अमल का वक्त आए तो नमाज भी ना पढ़ें। तो लिहाजा ये वो की है जिसको आप कह सकते हैं कि वो की जो जन्नत का दरवाज़ा खोलेगी, वो है ला ताबुदूना इल्लल्लाह। अपना जायज़ा हम लेके देखें, मैं किस किस की गुलाम हूँ। आप जिस ताकत से भी डरते हैं ना, वो ताकत एक इंसान की हो सकती है, एक गिरोह की हो सकती है, किसी फ़िरके की हो सकती है, तो आप समझ लें कि आप उनकी बंदगी में हैं। लोगों ने तो शोहरों को भी कह दिया कि ये मजाजी खुदा हैं, हालांकि कोई मजाजी खुदा नहीं होता। हाँ, वो मिजाजी खुदा हो सकते हैं, उनके मिजाज में है खुदा बनना। अल्लाह ने किसी को मजाजी खुदा नहीं बनाया। तो लिहाजा किसी की कोई बात सुनने से पहले, मानने से पहले ये पूछ लीजिए कि इस बात को मानने से मेरा रब तो नाराज़ नहीं हो जाएगा। बस ये है बंदगी। ये नहीं कि रब को पीछे ही डालते रहें, उसकी बातों को छोड़ते रहें और दुनिया वालों को खुश करते रहें। तो पहला हुक्म ला ताबुदूना इल्लल्लाह। यहाँ मैं तरतीब की भी बात करूँगी कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपनी बात की, फिर कहा वबिल वालिदैनि एहसाना, वालदैन के साथ एहसान करो। वालदैन से क्यों एहसान करो? अल्लाह ताला का एक असूल है कि जिसने जितना आपके लिए दर्द सहा, उतना ही आप का फ़र्ज़ है कि उसकी खिदमत करें। इंसानों में से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे साथ एहसानात हमारे माँ बाप के हैं। सादी सी बात है, आज अगर हम हैं तो क्यों हैं, किनके ज़रिए से हैं? रब ने तो पैदा किया, दुनिया में उसने भेजा, लेकिन अगर पैदा होते ही हमारे माँ बाप हमें पकड़ के ट्रैश कैन में फेंक देते, सोचिए ज़रा हम आज होते? आज जब हमारी ज़ुबानें माँ बाप के सामने बोलती हैं और माँ बाप के दिल के आबगीनों को तोड़ती हैं, ये शीशों से भी नाजुक दिल होते हैं, कि ये वो कैफियत होती है कि जब इंसान दोबारा बच्चा बन जाता है। अल्लाह ताला सूरत बनी इसराइल में भी हमें कहते हैं कि अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे की हालत में पहुँचें तो वला तनहरहुमा, उनको डांटो नहीं, उनको झिड़को नहीं, उनके आगे शाउट नहीं करो। क्योंकि आप देखिए कि एक वक्त आता है कि माँ बाप दोबारा बचपन की तरफ आ जाते हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि ये अजीब से बच्चे हैं कि इनके चेहरों पे झुर्रियाँ होती हैं, बच्चों की तरह इनके भी बात बात में आंसू निकल आते हैं, इनका भी दिल टूट जाता है। ये भी एक बात को बार बार पूछते हैं, इनको याद नहीं रहता, इनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। बाज़ दफ़ा इनको चलाने की कोशिश करें तो ये चल नहीं पाते, बच्चों की तरह ये खड़े हो नहीं पाते। ऐसे वक्त में कहा वबिल वालिदैनि एहसाना, तुम इनके ऊपर एहसान करो, अपने आप को इनकी जगह पे रख के सोचो, तुम इनकी सारी ज़िंदगी का सरमाया हो। चार मरतबा पूरे कुरान पाक में अल्लाह ताला के हक़ के फ़ौरन बाद वालदैन के हकूक़ का तذکرہ आया, उन्हीं में से एक मुकाम ये है। इससे पता चलता है कि इंसानों में, या आप कह सकते हैं कि हकूकुल इबाद में सबसे पहला हक जो है वो माँ बाप का है। हम सब अपने माँ बाप के साथ अपने मामले को देखें। सूरत बनी इसराइल तक पहुँचेंगे जब इंशाल्लाह, तब तो आपका भी जहन वसी हो चुका होगा, कुछ जज्बियत आ चुकी होगी, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, सिर्फ़ अपने माँ बाप के बारे में सोचना शुरू कर दें। और यहाँ लफ्ज़ एहसान पे बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब माँ बाप की बात आती है ना, तो लोग इतना एग्जेजुरेट करते हैं इस रिश्ते को कि बाज़ दफ़ा लफ्ज़ एहसान और इताअत का फ़र्क भूल जाते हैं। पूरे कुरान पाक में जहाँ भी माँ बाप की बात आई है ना, हुस्ने सुलूक की बात आई है, इताअत की बात कहीं नहीं आई। बल्कि सूरत लुकमान में तो खोल के कह दिया कि अगर इनमें से कोई तुम्हें शिर्क पर मजबूर करें तो फिर उनकी बात ना मानो। हाँ, वसाहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में अच्छे तरीके से रहो। क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन जो लोगों तक दीन पहुँचा है ना, वो जोशीली तकरीरों के ज़रिए पहुँचा है, और अमूमन वो मौजू जो हमें ख़ुद बड़े पसंद होते हैं ना, हम उस पर ही बात करना पसंद करते हैं। आम लोग जो पूरे कुरान का मिजाज नहीं समझे होते, वो हमारी जोशीली तकरीरें सुन सुन के मुसलमान हुए होते हैं। अब होता क्या है कि तकरीरों के अंदर माँ बाप के हकूक़ पे या उनके ताल्लुक़ पे जो बात होती है, वो इतनी दिल सोज होती है कि रुला रुला के लोगों को वहाँ से भेजा जाता है। बाज़ दफ़ा आने वाले इस सारी बात को तो महसूस कर लेते हैं, लेकिन इस फ़र्क को भूल जाते हैं कि अगर माँ बाप किसी गलत बात का हुक्म दे तो उसको क्या करना है। तो यहाँ नोट करने की बात है कि लफ्ज़ एहसान है। एहसान कहते हैं हक से ज़्यादा देना, हुसन से, बेहतरीन तरीके से उनके साथ ताल्लुक़ रखना। और माँ बाप का हक कितना है? एक शख्स ने अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा कि मैंने अपनी माँ को अपनी पुश्त पे बिठा के हज करवाया। गालिबन हज़रत उमर से पूछा, या मोस्ट प्रोबेबली हज़रत इब्ने उमर से पूछा था। तो कहने लगे कि मैंने अपनी कमर पे अपनी बूढ़ी माँ को बिठा के तो उसको पूरा हज करवाया, यानी तवाफ़, सही और जो कुछ भी है, क्या मैंने उसका हक अदा कर दिया? तो कहा कि तुमने उसका सारी ज़िंदगी का हक तो क्या, तूने उस दर्द का भी हक अदा नहीं किया जो उसने तेरे लिए सहा। क्योंकि आज साइंस ने इस चीज़ को साबित कर दिया कि जो डिलीवरी की पेन होती है वो हार्ट अटैक की पेन से कई गुना ज़्यादा होती है। ये कुदरत का फ़ैसला है, तभी बच्चा दुनिया में आता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके साथ एहसान करो। आपका ताल्लुक, आपका बात करने का अंदाज़, आपका पोस्चर, कुरान ने तो बैठने का तरीका तक बताया है, आपको उनकी तरफ देखने का स्टाइल, आप उनके आगे कैसे चलें, कैसे बात करें, ये सब कुछ भुला के और आप उनकी किसी गलत बात को बुनियाद बना के कह दें कि जी मेरे माँ बाप जो हैं वो मुझे नेकी से रोकते हैं। मसलन बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो औलादों को इस्लाम से रोकते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी से ये आके शिकवा किया था, अल्लाह के नबी दुआ करें मेरी माँ का दिल बदल जाए, मैं इस्लाम पे आता हूँ वो मेरा रास्ता रोकती है। सोचिए ज़रा, जिसको अल्लाह ने अबू हुरैरा बनाना होता है ना, उसके अपने ही घर में इतनी मुखालफत है, बैठ जाते माँ की बात सुन के कि अब माँ को तो नाराज़ नहीं करना क्योंकि अल्लाह ने कहा वह बिल वालिदैन एहसाना। ऐसा नहीं है, असूलों से कभी समझौता नहीं करना। बेअसूल शख्स कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, लिख लें अपने पास। जितना असूल को मानेंगे और उसको फॉलो करेंगे उतना अल्लाह आपको इज्जत देगा। जो माँ बाप का नाम लेके, और आज मैं साथ ही इसके डाल देती हूँ इसमें शोहरों को भी, क्योंकि आज के दौर में मारूफ तरीका यही है, दीन से रुकने में यही दो पहलू होते हैं, या माँ बाप या शोहर। जी शोहर नहीं मानते, वो हमारे दीन से खुश नहीं है, वो हमें ये कहते हैं वो कहते हैं, तो जब माँ बाप की बात इधर आ गई तो शोहर की तो उसके खुद ही अंदर आ जाएगी, क्योंकि शोहर का हक तो माँ बाप के हक से बहुत कम है। बहरहाल तो अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हारी माँ का दिल बदल देगा। और ये वो मौका था कि अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरी माँ बकायदा मेरे मुसलमान होने पे मुझे गालियाँ देती थी या मेरा रास्ता रोकती थी, और उस दौर में तो माओं की आदत थी कसम डाल देती थी, मैं रोटी नहीं खाऊंगी अगर तुम ये काम करोगे। एक औरत थी, एक सहाबी, मुझे नाम उनका याद नहीं इस वक्त, गालिबन साद बिन अबी वक्कास थे या कोई इसी तरह से दूसरे सहाबी थे। तो उनकी माँ ने कहा कि जब तक तुम इस्लाम से फिरते नहीं हो मैं कंघी नहीं करूँगी और मैं धूप में बैठी रहूँगी, खाना नहीं खाऊँगी। तो हज़रत उमर ने कहा कि रहने दो, खुद ही जुएं सताएंगी तो कर लेगी कंघी, भूख से जब बेहाल होगी तो खा लेगी खाना। और वो सारी माएँ पलट आईं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लम की दुआ का असर क्या था, मैं घर गया तो मुझे शावर की आवाज़ आई और मैंने देखा मेरी माँ गुसल करके निकली और कहने लगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जहाँ आपकी कोशिशें काम ना करें वहाँ दुआएं करें। आप मछलें रब के सामने रो के तो देखें, असल तो खोट अंदर होता है, अभी हमने कहीं ना कहीं कमी रखी होती है, उसकी वजह से ऐसे मसले आते हैं। हाँ, एहसान की सूरतें क्या हैं, आप इसको अमली तौर पे एक लिस्ट बना सकते हैं। उनके साथ नरम बात करना, उनको खुश रखने की कोशिश करना, उनको मोहब्बत से देखना, उनके आराम का ख्याल रखना, दिल में उनकी शुक्रगुजारी रखना, क्योंकि दिल से शुक्र फूटता है तो फिर रवैयों में आता है। माँ बाप को कभी भी अपने से कम अकल ना समझना, माँ बाप को अपनी जन्नत समझना, माँ बाप को वक्त देना। बात सब हम सब कुछ दे देते हैं, वक्त नहीं देते। आप हजारों का चेक मेल करते रहें लेकिन आप उनको अपनी शक्ल ना दिखाएं तो कभी भी एहसान नहीं होगा। फिर ज़िंदगी में उनके साथ अच्छा मामला है, फिर उनके मरने के बाद उनके लिए दुआएं खैर करना, उनके रिश्तेदारों और उनके दोस्तों को मिलना, सहेलियों को सिर्फ इसलिए मिलें कि मैं आपको इसलिए मिल रही हूँ कि आप मेरी अम्मी की सहेली हैं, मैं आपको इसलिए मिल रही हूँ कि आप मेरे अब्बू की बहन है। वो कहेंगी क्यों तुम्हारी फूफो नहीं हो, कहना वो होंगी लेकिन मैं तो आपको अपने अब्बू की बहन समझ के मिल रही हूँ। उनके कर्ज़ों को अदा करना, उनके छुटे हुए रोज़े रख देना, जो उनकी तरफ से नजरें थी कोई मानी हुई, जो जायज़ काम की थी उनको पूरा करना, उनके लिए दुआए इस्तगफार करना, उनके कफन दफन में शरीक होना। एक लंबी लिस्ट है, ये कीजिए, करने के काम करेंगे तो बात बनेगी। और बड़ी प्यारी दुआ रब्बे रहम हुमा कमा रब्बे यानी सगीरा, इसको कसरत से पढ़ा जा सकता है। और इस पे बात आगे बहुत होती रहेगी लेकिन यहाँ तरतीब देखिए। और मैं यहाँ फिर एक कमेंट दूंगी ज़रूर कि जिस कौम को माँ बाप के साथ एहसान का हुक्म दिया, आज उस कौम का हाल क्या है? माँ बाप के लिए ओल्ड होम्स, 18 साल की उम्र के बाद अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, साल में एक दफ़ा मदर डे पे और एक दफ़ा फादर डे पे। देखिए आज मुसलमानों को अगर ये हुक्म है तो इस वक्त तो आप बनी इसराइल की आयत पढ़ रहे हैं, ये बाइबल की आयत है, दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको कह सकते हैं। तो जिस कौम को इतने प्यारे अहकामात दिए, आज उनकी नस्लें मादर पिदर आज़ाद क्यों हो गई? कौन सी चीज़ रास्ते की रुकावट थी? किताब नहीं पढ़ी। और माजरत के साथ, जिस तेज़ी से हमारी इस किताब से दूरी है, क्या आज हमारी औलादों की आंखों का रंग नहीं बदला हुआ दिखता? वो मोहब्बत टपकती हुई दिखती है माँ बाप के लिए जो होनी चाहिए? वो आजजी दिखती है? दूसरों से बात करेंगे तो ऐसे लगेगा कि इनसे ज़्यादा बाअख़लाक कोई नहीं, और माँ बाप से बात करें तो ऐसे जैसे बादल गरजते हैं। और आपको तो समझ ही नहीं, और आप तो बस स्टूपिड हैं, और ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं बच्चे कि कान सुनने को गवारा ना करें। वजह क्या है? किताब से दूरी। बस माँ बाप एक और जुल्म करते हैं, बच्चे को कभी कभार लेके आएंगे ज़बरदस्ती और आके कान में कहेंगे आज ज़रा माँ बाप के हकूक़ पे बात कीजिएगा। आज आयत पढ़ते हुए मुझे फ़ौरन वही बात याद आई तो मैंने रोक ली कि बाद में आपसे तذکرہ कर दूंगी अगर अल्लाह ने चाहा। अल्लाह ने क्या कहा कि अगर किसी को तालीम देनी है ना तो ला ताबुदून इल्लल्लाह से शुरू करो। हमने उसको तो निकाल दिया। ये कहते हैं वह बिलवालिदैन एहसान है, तरतीब तो हमने खुद बदल दी। मैंने कहती हूँ आप इनको अल्लाह से जोड़ें या आपसे खुद ही जुड़ जाएंगे। वो माँ बाप जो अपनी औलादों को अल्लाह से जोड़ते हैं ना, उनके बच्चे खुद ही उनसे जुड़ जाते हैं। उन माँ बाप को कभी अलग से नहीं कहना पड़ता कि हमारे हकूक़ मानो, ये करो, बल्कि ये भी सेल्फिशनेस होती है, खुदगर्जी है। बच्चे भी देखते हैं कि ये जब भी दीन की बात करते हैं तो माँ बाप के हकूक़ पे बात कर देते हैं, लिहाजा ये बस दीन भी वही सिखाना चाहते हैं जो खुदगर्जी का दीन है। हमें इसकी कम ही फिक्र होती है कि हमारे बच्चों का हमारे रब से क्या ताल्लुक़ है या अपने रब से क्या ताल्लुक़ है, इसकी ज़्यादा फिक्र होती है कि उनका हमसे क्या ताल्लुक़ है। तो तरतीब रखिए, अल्लाह ताला खुद ही उनके दिल खोल देगा। आप चाहते हैं ना आपका बच्चा आपके आगे झुके, आपसे प्यार करे, आपसे नरमी रखे, बस आप उसके दिल में अल्लाह की बातें डालना शुरू हो जाएं और दिल के अंदर से भी ये ख्याल खुरच दें कि कल को ये मुझे पानी पिलाएंगे या ये मुझे खिलाएंगे या मुझे इनकी कमाई खानी है। जब तक माँ बाप बेलौस किस्म की परवरिश नहीं करेंगे ना, उनको खैर नहीं मिलेगी। हमारी तो मुआशी उम्मीदें ही औलादों से लग गई। पालते हैं चार चार छः छः बच्चों को, रोज़ जाते हैं, संवारते हैं, स्कूल भेजते हैं, किस उम्मीद पे? बुढ़ापे में साथ देंगे, इनकी कमाई खाएंगे। ये भी दुरुस्त नहीं है। आप सब बच्चों को पालते होंगे इंशाल्लाह, जिनको अल्लाह ने ये नेमत दी है। आज इस आयत को सुनते वक्त ये नियत कर लें कि हमने अपनी औलादों की खिदमत फी सबीलिल्लाह करनी है, लिल्लाह करनी है। मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही ख्वाहिश है कि ये अल्लाह के प्यारे बंदे बन जाएं, ये दीन के मुजाहिद बन जाएं, ये इस्लाम के सिपाही बन जाएं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। करके देखिए, अल्लाह इसके तोहफे में पहले उनको आपका फरमाबरदार बनाएगा। और आपके बच्चों को जब ये यकीन हो जाएगा ना कि मेरे माँ बाप मुझसे नहीं कुछ चाहते, तो इंसान की फितरत है, जब कोई चाहता नहीं है ना तो वो उसको खुद ही देता है। बहरहाल, वज़िल क़ुरबा, क़राबत वाले, अल अक़रबु मिन अल अक़रब, करीबी से करीबी, अक़रब से अक़रब। इसमें कौन आते हैं? माँ बाप के बाद आया ना ये लफ्ज़, तो माँ के बाद खाला। हदीस में आता है कि खाला बमिसल माँ है। अल्लाह ना करे अगर माँ का इंतकाल हो जाए तो उस बच्चे की परवरिश खाला को दी जा सकती है। इसी तरह ज़िल क़ुरबा में क़राबत बाप की तरफ से किधर जाती है? बाप के बाद, ऑफ कोर्स देखिए बाप में सारे लफ्ज़ आते हैं, बाप दादा ये सब ऊपर के बाप सारे आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद चचा, बाप के बाद चचा है। से होती है, ये नहीं कि जिसको तुम करीबी समझो वो करीबी है। अरबी का एक असूल है, अल अक्रबु मिन अल अक्रब, करीबी दूसरे करीबी से पहले, मतलब चचा से पहले चचा का बेटा नहीं करीबी हो सकता, ठीक है? इनके साथ ये है सिला रहमी। कुरान पाक में सिला रहमी का बहुत ज़्यादा तذکرہ है। यहाँ तो सिर्फ एक इशारा है ना, सूरत निसा में हम तफसील से पढ़ेंगे कि रिश्तेदारियों को मिलाना क्या होता है, लेकिन इसके बारे में चंद जुमले बोलना चाहूँगी क्योंकि आज के दौर में ये भी नेगलेक्टेड चीज़ है। जब औलादों को हमने दुनिया की इतनी तरक्कियों में और इतनी आसाइशों में रखा कि कई कई साल तक वो अपने ख़ानदानों रिश्तेदारों से कटे रहे, नतीजा क्या निकला कि फूफी और खाला का फ़र्क भी नहीं पता। एक रिश्ता पता है आंटी, और एक रिश्ता पता है अंकल, और तीसरा पता है कज़न। आप पूछिए, आप एक छोटा सा सवाल लिख लें इस आयत पे कि घर जाके आप अपने बच्चों को बिठाएं और आप उनकी सारी खालाओं के, चचाओं के, मामों के, फूफियों के नाम, उनके फैमिली ट्रीज बनवाएं। देखिए अगर हमने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को उनके रिश्तों से काट दिया ना, रिश्तेदारियों से काट दिया, तो कल तो वो पता नहीं कहाँ जाएंगे। ठीक है दूसरे मुल्कों में रहते हुए हर लम्हे आप उनको नहीं जा जा के मिलवा सकते, लेकिन फासलों से कुछ नहीं होता, गुरबत तो जहन की होती है। आप बच्चों से वो काम करवाया करें कि जिससे उनको पता चले कि हमारे ऊपर माँ बाप के अलावा दूसरों के भी हक है। और इसको अरबी में सिला रहमी कहते हैं। खराबदारी कुर्ब से है, यानी रिश्तेदारियों को मिलाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि इसके रिस्क में फराखी हो और इसकी उम्र लंबी हो तो इसे सिला रहमी करना चाहिए। ये सही बुखारी की रिवायत है। कोई है जो ये ना चाहे कि उसके पास रिस्क ज़्यादा हो, या ये ना चाहे कि उसकी उम्र लंबी हो, तो ये दो काम मिलते हैं रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने से। इसके ऑपोजिट को कहते हैं कतई रहमी। आपने फरमाया कतई रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो लिहाजा इस पे अहादीस इंशाल्लाह आगे हम जाके नोट करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ हम अपने ही ताल्लुकात को देख लें। क्या हम चंद ख़ास मखसूस लोगों को मिलने का नाम सिला रहमी कहते हैं? जो हमसे मिले बस उसको मिलना है? नहीं, हर एक को मिलना है, वन साइडेड। किसी से कोई भी बात ऐसी नहीं रखनी कि जिसकी वजह से ये हो कि वो करेंगे तो हम करेंगे, और वो जहाँ बराह रास्त सिला रहमी का लफ्ज़ आएगा फिर वहाँ हम उस पर बात करेंगे। फिर फरमाए वल यतामा, यतीम, ऑर्फन्स, जिनके बाप नहीं या माएँ भी नहीं बास हालात में, यानी ऐसे लोगों के साथ भी अच्छा सलूक करो। क्यों? क्योंकि इन बेचारों के पास तो बहुत कम नेमतें होती हैं। इनसे तो लोग वैसे ही दूर दूर रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सर पे ना पड़ जाए। इस्तलाह में यतीम उन छोटे बच्चों को कहते हैं जिनका सरपरस्त बाप ना हो। और बलूगत के साथ, यानी प्यूबिटी की एज जब आती है ना, तो लड़के की यतीमी ख़त्म हो जाती है, अपना काम कर सकता है, कमा सकता है, और लड़की की यतीमी का ताल्लुक उसके निकाह से है। जब कोई शादी हो जाए ना तो उसके बाद वो यतीम नहीं होती। और हमारे यहाँ एक आवाज़ लगती है, 80 साल का बूढ़ा भी कहता है कि यतीम फ़कीर बाबा को रोटी दे दो। तो यतीमी का ताल्लुक या उसके ऊपर एहसान करने की जो सारी जिम्मेदारी है वो प्यूबर्टी के साथ है या फिर निकाह के साथ। वल मसाकीन, और मिस्कीनों को। मिस्कीन कौन होते हैं? वो लोग जो अपनी और अपने बाल बच्चों की परवरिश और दीगर ज़रूरियात पूरी तरह मुहैया ना कर सकें। सूरत निसा में बहुत तफसील से ये सब लोगों का तस्कर आएगा, लेकिन आप देखिए हैंड टू माउथ लोग, सफ़ेद पोश, एक चादर ढांपते हैं तो पाँव खुल जाते हैं, पाँव छुपाते हैं तो सर खुल जाता है, एक ज़रूरत अल्लाह अल्लाह करके पूरी की तो कोई दूसरा खर्चा निकल आया, इनको मिस्कीन कहते हैं। इनका ख्याल रखना इंशाअल्लाह ताला। वकूलुलिन्नासी हुस्ना, और लोगों के साथ अच्छी बात करो, एहसान की बात करो। अल्लाह ताला ने क्या बता दिया कि लोगों के साथ अच्छी बात करो, मतलब क्या है इस बात का कि जो बंदा इंसानों के बीच में रहता है उसको अच्छी बातें करनी चाहिए। अब क्या है अच्छी बातें, इससे क्या मुराद है? आप कहेंगे अच्छी बातें ये कि बहुत ज़्यादा बातें करो, उनको कंपनी दो। नहीं, देखिए सूरत हामीम सजदा में है कि वमन अहसनु कौलम में मन दा इलल्ला, उससे ज़्यादा अच्छी बात किसकी है जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया। तो कूलु लिन्नासि हुस्ना की पहली एप्लीकेशन क्या होगी कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, उनको दीन की दावत दो। तबलीग इसमें आएगी, लोगों को बुराई से रोकना, भलाई का हुक्म देना, नरमी से बात करना, बुर्दबारी दरगुजर, उनकी ख़ताओं को माफ़ कर देना, अच्छा अखलाक अख्तियार करना। नबी सल्लम ने फरमाया कि अच्छी चीज़ को यानी नेकी को हकीर ना समझो, अगर कुछ ना हो सके तो अपने भाइयों से हंसते हुए चेहरे के साथ मुलाकात किया करो। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। पता क्या चला कि अच्छी बात तो अच्छी है किससे, जो खुद अच्छे हमसे। हम कहेंगे हम तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आपका अखलाक कैसा है तो आप कहेंगे जी माशाल्लाह बहुत अच्छा। किसके साथ? वो मेरी बचपन की सहेली के साथ मैं बहुत खुश होती हूँ, जो फलां लोग हैं जो मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं उनसे मैं अच्छी हूँ। नहीं, देखिए अच्छी बात अगर आप सोचें तो पूरे दीन का खुलासा है। बुरे माहौल में भी अच्छी बात, सताने वालों के हक में भी अच्छी बात, और अच्छी बात किसी के अच्छे काम के एतराफ़ में करना तो सबसे मुश्किल होता है। अना आ जाती, हम इसके अच्छे काम की तारीफ़ करें, फिर अपने बराबर के लोगों के साथ तो अच्छी बात करते ही हैं, लेकिन कमज़ोरों के साथ अच्छी बात करना, मासियों के साथ, मेट्स के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, ये बहुत मुश्किल होता है। और यकीन करें बहुत मुश्किल होता है। जो लोग अपने ऊपर अना की चादरें चढ़ाए रखते हैं ना और लोगों को करीब नहीं आने देते, वो कहते हूँ ज़्यादा बात की सर पे चढ़ जाएंगे, ज़रा तारीफ़ कर दी ऐसा हो जाएगा। नहीं, जहाँ शिकायतें हों, जहाँ आपके दिल में खटास हो, उनको जब आप मिलें तो आप हंदा पेशानी से मिलें। ये है कूलु लिन्नासि हुस्ना, अच्छी बात अच्छे माहौल में भी और अच्छी बात बुरे माहौल में भी, सब इंसानों के साथ, यानी कि चंद के साथ। चंद के साथ अच्छे हैं और बाकियों के साथ ख़राब है। अपने माँ बाप के साथ तो बड़े अच्छे, और ससुराल वालों के साथ कैसे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लहजा भी नरम हो, तवज्जो भी हो, नरमी का अंदाज़ हो, आपके रवैयों से भलाई टपके, आपका अंदाज़ तंज वाला ना हो, नफ़रत का अंदाज़ ना हो, ये सब कूलुल इन्नास हुस्ना में। और ख़ास तौर पे कूलुल इन्नास हुस्ना का ताल्लुक़ लोगों को तबलीग करने के साथ भी है। जब लोगों को दीन की बात बताएं तो उस वक्त आपका अंदाज़ क्या हो, हुस्ना अच्छा हो, नरमी से बात करें, उनको ताने ना दें। कोई कैसा भी हो, आप उसको काफिर, मुनाफिक, फलां, लानती, ऐसे लफ्ज़ मत बोले। अल्लाह ताला ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम दोनों को जब फिरौन की तरफ भेजा तो क्या कहा, कूला लहू कौलल लयीना, सूरह तौहा में आएगा कि दोनों कहना उससे बात बड़ी नरम नरम बात करो। अल्लाहु अकबर। एक बुजुर्ग हैं तलहा बिन उमर, कहते हैं कि मैंने तफसीर हदीस के इमाम जो अता थे उनसे कहा कि आपके पास फासिद अकीदे वाले भी लोग आते रहते हैं, जमा होते ही नहीं, जिनके अकीदे ख़राब नहीं, वो आपसे भागते नहीं, आपके करीब ही होते हैं, मगर मेरे मिजाज में बड़ी तेज़ी है, मेरे पास अगर ऐसे लोग आते हैं तो मैं तो उनको सख्त सुना देता हूँ। होते हैं ना जैसे हमारे यहाँ कहते हैं खरी खरी सुना दी। हाँ, तो हज़रत अता ने कहा कि देखो ऐसा ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि कूलु लिन्नासि हुस्ना। इसमें तो यहूदी और नसरानी भी दाखिल हैं, मुसलमान ख्वाह कैसा ही क्यों ना हो, वो क्यों इसमें दाखिल ना होगा। ये तफसीर कुर्तुबी की रिवायत है। इससे पता चलता है कि लोगों के साथ नरम मामला हो। अच्छा, अब आपने ये बात सुन ली कूलु लिन्नासि हुस्ना, तो आप कहें बस जितने गैर मर्द दिखें बाहर उनके साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करो, क्योंकि कूलु लिन्नासि हुस्ना है। सोचिए जहाँ दीन को इस्तेमाल करना होता है फौरन कहते हैं देखें दीन अखलाक सिखाता है। अब क्या हम अपने घर में आने वाले मर्दों से बोले ना, शौहर के दोस्त का फोन आया तो ये कैसे हो सकता है कि हम 15 मिनट बात ही ना करें? हम पहले पहले हम करेंगे, भाभी क्या हाल है, क्या किया है भाभी भाभी, फिर शौहर को फोन दिया जाएगा या कहा जाएगा वो घर पे नहीं। ये कुलू लिन्नासी हुस्ना नहीं है, क्योंकि पहले कह दिया ला ताबुदू ना इल्लल्ला। देखिए हदों को अपनी मर्जी से फलांगना जो होता है ना, ये दुरुस्त नहीं होता। जहाँ बात करने की ज़रूरत पेश आए, मौका महल देखकर इंसानों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो शरीयत के दायरे में रहते हुए रखे जाएंगे, ना कि खुद साख्ता ताबीरें की जाएंगी कि अब फलां इतना बड़ा अफसर है तो अब मैं उसके सामने कैसे ना बोलूं, और वो शेक हैंड करना चाहे तो अब मैं हाथ पीछे कर लूंगी, ये तो बड़ी बुरी बात हो जाएगी। नहीं, अल्लाह के हुक्मों के अंदर रहते हुए, बस लोग तबलीग करते हुए भी सबको नाम ले लेके रुसवा करना और उनके ऊपर तंज करना, टॉन्ट करना, मजाक करना, खेलना खिलाना, ये दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा इसको आप कहीं भी डालें। आपने एक चीज़ नोट की कि अभी तक नमाज रोज़े का जिक्र नहीं है, उन पे नमाज और ज़कात थी, जिसका आगे हुक्म आ रहा है कुलु लिन्नास हुस्ना पहले है। अब इसका ये मतलब है कि नमाज और ज़कात अहम कम है? नहीं, ये मुराद नहीं। इससे पता चलता है कि बाज़ दफ़ा नमाज़ें जो अल्लाह के लिए पढ़ी होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं हमारे लोगों के साथ बुरे ताल्लुकात की वजह से। नबी सल्लम ने फरमाया कि वो शख्स बहुत ही बदबख्त है कि जिसके अखलाक की वजह से लोग उसको मिलना छोड़ दें, जिसकी बुरी आदतों की वजह से उसको मिलना छोड़ दें। तो लिहाजा जब कभी अल्लाह की बात बंदों तक पहुँचाएँ तो भी अंदाज में तकब्बुर ना हो। किसी के स्टेटस को सामने रखने की बजाय हर तबके के लोगों से बात कीजिए। आप अपने नौकरों के साथ कैसे बात करते हैं इसको भी ज़रा देखिए। आपके अंदर इतना इखलास होना चाहिए कि आप लोगों को तनकीद भी करें तो इस तरीके से करें कि दर्द हो आपके अंदर, इतराज़ का अंदाज़ नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह हुस्ना के अंदर आवाज़ में उतार चढ़ाव भी होना चाहिए। कभी आप जोश में बात करें, कभी ठंडी बात करें, कभी गुस्से में हैं, कभी नरमी में बात करें। बस लोग बात करते हैं ना तो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत करते हैं, उसको भी ज़रा देखें। अगर हम अपनी लैंग्वेज को चेक करना चाहें ना कि हम कैसे बोलते हैं, तो आप अपने घर वालों से मदद ले सकते हैं। शर्त ये कि उनको भी कुछ थोड़ा सा तनकीद करनी आती हो। वैसे अपनों को कहेंगे तो बहुत ही अच्छी करेंगे, दूसरों पर तनकीद बहुत होती है, लेकिन अगर आप वाकई अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाहते हैं ना, तो अपने घर वालों को कहा करें कि जब मैं बातें करती हूँ तो मैं कैसे करती हूँ मुझे बताएं। बाज़ लोग आंखें बहुत खोल खोल के बात करते हैं, उनको नहीं पता चलता, अब दूसरों को पता चलता है। हंसते हैं तो एकदम साथ उनकी आंखें भी इस तरह से खुल जाती हैं या बंद हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा लोग हाथों को बहुत हिलाते हैं, बाज़ लोग साथ एक्शंस कर करके दिखाते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बाज़ लोग बहुत ऊंची बोलते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना अनकर अलअस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे ज़्यादा मकरूह आवाज़ जो है वो गधे की आवाज़ है। तो ये सारी चीज़ें देखें, क्योंकि अब देखिए जो हमारा अंदाज़े गुफ्तगू होता है ना वो हमारी शख्सियत का तर्जुमान होता है। जितना अंदाज़ खूबसूरत होगा ना उतना ही ज़्यादा आपकी बात दिल में आएगी। तकल्लुफ़ नहीं बरतना, आर्टिफिशियलनेस नहीं होनी चाहिए, हो आपकी जिद्दत हो आपके पास, यानी बात ऐसी कि जो दिल में उतरे, लेकिन उसके अंदर से बस बेकार चीज़ों को निकाल देना। फरमाया वकूलु लिन्नासि हुस्ना, और इसी से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी गुफ्तगू जब दुरुस्त होती है ना तो आप खुद ब खुद अपने आप से भी मुतमईन होने लगते हैं। वरना होता क्या है कि हमारे बात करने से पहले तो लोग कम दुश्मन होते हैं दीन के, हमारी बात के बाद वो ज़्यादा से ही होने लगते हैं। बस जब आपने देखा लोग कहते हैं बस वो एक मौजू पे बात छुड़ी फिर उसके बाद बहस शुरू हो गई, फिर बाज़ तो कुछ लोग बड़े गुस्से में आके उठ के भी चले गए। फौरन देखें, जहाँ खामोश रहना है वहाँ खामोश रहना भी कूलुल लिन्नासी हुस्ना में आता है। फिर फरमाया व अकीमुस्सला, और नमाज कायम करो। अब नमाज की बात आई, ये कौन सी नमाज थी? बनी इसराइल पर भी नमाज थी, कोई दीन ऐसा नहीं गुजरा कि जिसमें नमाज ना हो। उसके रिचुअल्स फ़र्क हो सकते हैं, तादाद फ़र्क हो सकती है, तरीका फ़र्क हो सकता था, लेकिन नमाज तो हर दौर में थी। और यहाँ फिर वही बात है, अकीमुस्सला, इज्तमाई नमाजों का अहतमाम करो, लोगों को एक कम्युनिटी की बेस पे जोड़ो ताकि नमाज़ों का असर भी दिखे। ये भी अकीमुस्सलात है कि नमाज का असर उन सोसाइटीज़ में दिखने लगे। वातुज़्ज़का, और ज़कात अदा करो। कौन सी ज़कात? मालों की ज़कात और नफ्सों की ज़कात। हमारे पास तो 100 में से 2.5% है, उनका ज़्यादा था इससे हिस्सा। बाज़ कहते हैं कि उनको अपने माल की 10% ज़कात देना होती थी। और यहूदी जो थे वो माल की मोहब्बत में बहुत ही चूर थे, इसलिए उन्होंने फिर इसमें बहुत सारी कमी बेशियां कर दी। हमारे लिए ज़कात के अहकाम कहाँ आएंगे? सूरह तौबा में, जहाँ डिटेल से बात होगी किसको दें, कहाँ दें, कितनी दें। लेकिन यहाँ बस ये समझ लें कि जिसने अपने माल पे 1 साल के बाद ज़कात अगर नहीं दी, तो वो माल कल उसके लिए हुज्जत बन जाएगा, कि हदीस में आता है कि गंजा सांप बनकर उसको डसेगा, उसके मुंह को, उसके जबड़ों को खोलेगा और डसेगा और कहेगा, अना कंजुक, मैं तेरा ख़जाना हूँ, अना कंजुक। और इसलिए बहुत ज़्यादा इख्तमाम होना चाहिए कि अपनी वो सारी चीज़ें जो हमारे पास मौजूद हैं किसी भी एसेट की सूरत में, तो उस पे ज़कात अदा की जाए। फिर फरमाए, सुम्मा तवल्लई तुम, फिर तुम फिर गए। देखिए ये है एराज का रवैया। कौमों पे जब जवाल आता है ना, तो इस तरीके से इतने प्यारे अहकाम को सुन के भी मुँह फेर लेते हैं। हाँ, आज हमने तो नहीं मुँह फेरे हुए। इल्ला कलीलम मिनकुम, मगर थोड़े से बचे। इससे क्या पता चलता है कि हर दौर में दीन की बात को सुनकर मानने वाले थोड़े होते हैं और एराज करने वाले ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मुंह फेरने वाले होते हैं। व अंतुम मोरिदून, और तुम हो ही मुंह फेरने वाले। बस तुम तो हो ही ऐसे लोग कि जिनको कभी भी कुछ अच्छा नहीं लगता। तिलावत सुनते हैं।
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ